चौथा स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 23 और 24 दो श्लोक बोले। विषंग निविम सुश्रोणिम श्यामं कनकमेखलां पद्भ्यां क्वणद्भ्यां चलन्तीं नुपुरैर्देवतां इव। विषंग निविम सुश्रोणिम श्यामं कनकमेखलां पद्भ्यां क्वणद्भ्यां चलन्तीं नूपुरैर्देवताम् इव। पिशङ्गनिविं सुश्रोणिं श्यामं कनकमेखलां पद्भ्यां क्वणद्भ्यां चलन्तीं नुपुरे देवताम् इव। सुक्षेणिं सुंदर कमर, सुश्रोणिं सुश्रोणिं सुंदर कमर, श्यामां श्याम रंग की, कनक सुनहली, मेखलाम करधनी, पद्भ्याम पांव से, कनकभ्याम शब्द करती हुए, चलंतिम चलते हुए, नुपुरहे नुपुरों से, देवताम स्वर्ग का वासी इव सदृश। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और पीली करधनी पहने थी। चलते समय उसके नुपुर ध्वनि कर रहे थे। वह ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो स्वर्ग की निवासिनी हो। तात्पर्य, इस श्लोक में उन्नत नितंबों तथा उरोजों वाली स्त्री को जो आकर्षक साड़ी पहने हो तथा आभूषणों से सजी हो, देखकर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को व्यक्त किया गया है। और अगला श्लोक भी पढ़ेंगे हम, 24वां श्लोक। स्थनो व्यंजित कैशोरो समवितो निरंतरो वस्त्रांतेन निगुहंतिम वृडया गजगामिनिम। स्त्री अपनी साड़ी को अंचल से अपने समन वर्तुल एवं सटे हुए स्थनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्थनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। तात्पर्य, दोनों स्तन राग तथा द्वेष के प्रतीक हैं। भगवद गीता में राग तथा द्वेष के लक्षणों का वर्णन हुआ है, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक में। इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हस्य परिपंथिनौ। अनुवाद, देहधारी जीवों द्वारा वस्तुओं के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। राग तथा द्वेष के प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। मनुष्य को स्त्री के स्तनों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए। परम संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तनों को रक्त तथा पेशियों का समुच्चय माना है, अतः उन्नत स्तनों के अग्रभाग की मोहक शक्ति के से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। यह माया के दूत हैं जो पुरुष को शिकार बनाते हैं, क्योंकि स्तन समान रूप से आकर्षक होते हैं, अतः समवृत्तयो कहा गया है। कामोत्तेजना वृद्ध पुरुष के भी मन में मृत्यु पर्यंत रहती है। इस उत्तेजना से मुक्ति पाने के लिए यमुनाचार्य के समान अत्युच्च आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। उन्होंने कहा है, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवनवरस धामने उद्यंतम रंतुमासित तद अवधिपत नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निश्चीवनम च। क्योंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित नूतन आनंद प्राप्त होता है। अतः जब भी मैं काम के आनंद की विषय में सोचता हूँ तो इस विचार पर मुझे घृणा होने लगती है और मेरे होंठ बुरे स्वाद के से भर जाते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है वह मांस तथा रुधिर के लोथड़ों से जो नारी के स्तन स्वरूप हैं आकृष्ट नहीं होता। निरंतरों शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग अलग स्थित रहते हैं किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग तथा द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न है। काम एष क्रोध एष रजत गुण समुद्भव। निगुअंतिम ढकने का प्रयत्न करती हुई शब्द सूचित करता है कि भले ही कोई काम क्रोध लोभ आदि से रंजित क्यों ना हो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में काम का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहर्निश श्रम करता है। इसी प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न के लिए अहर्निश काम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन श्रम करते हैं, उसी प्रकार भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। इसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। उसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जा सकता है। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसे ही उपयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाता है। उमज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाख्या चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत ही सुंदर है। तो श्लोक अभी जो प्रसंग चल रहा है क्या है, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो जैसा आप सुनते आ रहे हैं कि पुरंजन कौन है, कौन है पुरंजन, हम सब है पुरंजन। तो नारद मुनि जब राजा प्रचिन भरि को उपदेश दे रहे हैं तो उदाहरण कह रहे हैं, क्योंकि देखिए कितने अच्छे प्रचारक है वो जानते हैं अगर मैं डायरेक्ट प्राचीन भरि को कह दूँ कि तुम ऐसे हो, तुम बदजीव हो, ऐसे कर रहे हो, इस तरह से कष्ट भोगोगे, तो शायद वो डायरेक्टली नहीं लेते। तो इसलिए उनको इनडायरेक्टली कह रहे हैं, परोक्ष भाव से कह रहे हैं कि एक राजा था, उसका नाम था पुरंजन। तो उसकी कहानी बता रहे हैं, कैसे वो शिकार करने निकला, कैसे वो एक स्त्री का आकर्षित हुआ, इस तरह से पूरी कहानी बताते हैं लास्ट में कैसे। तो ये जो पूरी कहानी सुनते रहते हैं राजा प्रचिन भरि, तो लास्ट में उन्हें लगता है अरे ये पुरंजन तो कोई नहीं, मेरी कथा है, मेरी कहानी है। इस प्रकार एक्चुअली प्रचिन भरि नहीं, हम सबकी कहानी है। पुरंजन माने बद्ध जीव, जो स्पुर, जो शरीर है, कितने द्वार का शरीर है, 9 द्वार का, जो इसको पुर यानी शहर कहा जा रहा है, एक शहर जिसके 9 दरवाजे हैं। और सब आप पिछले श्लोक में सुने हैं, इसमें मकान है, उद्यान है, तो शरीर के विभिन्न अंगों को इस तरह से उदाहरण के रूप में बताया गया है। तो पुरंजन यानी बद्ध जीव, जो इस शरीर रूपी पुर या शहर में निवास करता है, इसमें बद्ध है, हम सब पुरंजन हैं। तो जो पुरंजन है ये क्या कर रहा है, न एक स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया। स्त्री कौन है, बुद्धि। तो हम जो बद्ध जीव हैं, हम हमारी भौतिक बुद्धि से आकर्षित हो जाते हैं, मेटेरियल इंटेलिजेंस। तो उसका वर्णन किया जा रहा है कि ये स्त्री बहुत सुंदर थी देखने में, अच्छी साड़ी पहनी थी, सुंदर शरीर था इसका, सुंदर स्तन थे, तो उसको देख के पुरंजन आकर्षित हो गया। तो प्रभुपाद जी श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक में बता रहे हैं, पहले तो कह रहे हैं कि जो दो स्तन है इसको राग और द्वेष के साथ तुलना किए हैं प्रभुपाद जी, राग द्वेष समुत्तेतन। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न है, राग और द्वेष, काम और क्रोध, काम एश क्रोध एश रजत गुण समुद्भव। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो जीवात्मा है हमारे दो महान शत्रु हैं, कौन, काम और क्रोध। हम तो दूसरों को शत्रु मानते हैं, हम सोचते हैं ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा बुरा किया, लेकिन असली शत्रु कौन है, काम और क्रोध, हमारे अंदर ही बैठे हैं असली शत्रु। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम सब तो जानते हैं कि कैसे पूरा संसार इस काम वासना के वशीभूत होके लोग मोह में है, हम सब बहुत कहानी हम सुने हैं, कितना प्रयास करने पर भी, बड़े बड़े ऋषि जैसे विश्वामित्र भी हजारों साल तपस्या करने के बाद भी मेनका से केवल उनके नुपुर के शब्द सुन के क्या हो गया, उनका पतन हो गया। सौवारी मुनि जो यमुना जी के नीचे पानी के अंदर हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन फिर क्या हुआ, मछलियों को देखे वो, और केवल मछलियों को देख के उनका मन विचलित हो गया कि मछली जब संग कर रहे थे, स्त्री संग कर रहे थे, तो उनको देख के लगा, अरे मेरे को भी करना चाहिए। तो तुरंत पानी से बाहर आ गए और राजा के पास गए और बोले, मेरे अपने पुत्रियों से मेरी शादी कराओ। देखने में तो भयानक थे। तो आप सब ये कहानी जानते हैं कि राजा तो डर गए, मैं हाँ बोलूँ तो प्रॉब्लम है, समस्या आ जाएगी, मेरी बेटी मुझसे नाराज हो जाएगी, और अगर ना बोलूँ तो दुर्वासा मुनि भी श्राप दे देंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ही मेरे कन्या को डायरेक्ट बोलिए। और जब उनको देखे सारी कन्या भयभीत होने लगी, तो फिर सौवारी मुनि ने अपने आप को एक सुंदर रूप में बदल दिया, क्योंकि महान योगी थे। और उसके बाद उनकी जो 50 कन्या थी उनमें आपस में झगड़ा हो गया, कौन शादी करेगा उससे। तो फिर सब ने शादी कर लिया उनसे। तो सौवारी मुनि की हम कहानी जानते हैं। और ऐसा क्यों हुआ था सौवारी मुनि के साथ, सबको पता है कि इतने बड़े ऋषि क्यों काम के वश में आ गए थे? क्योंकि उन्होंने गरुड़ जी का अपराध किया था। गरुड़ जी जैसे महान वैष्णव, जब गरुड़ जी, क्योंकि हैं तो महान वैष्णव लेकिन हैं एक ऐसे शरीर में क्योंकि मछली खाते हैं, तो इसलिए गरुड़ जी जब इधर आए यमुना जी किनारे मछली लेने खाने के लिए, तो सौवारी मुनि को अच्छा नहीं लगा। अरे मेरे जगह में मैं यहाँ पे हूँ, ये आके कैसे ऐसे खा रहा है? तो उन्होंने श्राप दे दिया गरुड़ जी को, कहता है आप यहाँ पे कभी आ नहीं सकते। गरुड़ जी तो वैष्णव है, उनको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है कोई बात नहीं आऊँगा। गरुड़ जी चाहते तो भी उसका उनके साथ झगड़ा कर सकते थे। लेकिन देखिए, जो मछली को बचाने के लिए सौवारी मुनि ने गरुड़ जी के चरण में अपराध किया, वही मछली कारण बन गई उनके पतन का। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उनका पतन हुआ सौवारी मुनि का, काम वासना के कारण, लेकिन काम वासना का कारण था वैष्णव अपराध। तो बोलने का तात्पर्य कि कई सारे महान महान ऋषि मुनि के हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे वो काम के वशीभूत हो जाते हैं। बड़े बड़े राजा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे तो पूरे संसार उनसे डरता है, लेकिन जब वो अपने घर के अंदर जाते हैं तो किनसे डरते हैं? अपनी रानी से ही डरते हैं। मुचुकुंद महाराज भी ऐसा कहते हैं अपनी स्तुति में। तो हम सब जानते हैं, बहुत सुने हैं कि कैसे काम वासना के वश में होके सारे बद्ध जीव इस संसार में बंधे हुए हैं। इसे मैथुनागार कहते हैं। हम सब बंधे हुए हैं, लेकिन वो चेन क्या है हमें दिखता नहीं है। वो ऐसा जेल है कि वो ऐसी चेन है जो दिखता भी नहीं, लेकिन बहुत मजबूत चेन है। इसको हम ऐसी जंजीर है जो दिखता नहीं लेकिन सबसे मजबूत है। क्या है वो? काम वासना, इस संसार में भोग करने की वासना, स्त्री पुरुष का आकर्षण। तो इससे कैसे मुक्त हो, ये बहुत ही गंभीर विषय है। और इसका प्रभुपाद जी कहते हैं एकमात्र उपाय क्या है कि जिसे भक्ति में ऊंचा स्वाद मिल जाए, और कोई उपाय नहीं है। आप चाहे कितना प्रयास कर लीजिए, कितनी तपस्या कर लीजिए, कितनी कोशिश हम सब कर लें, लेकिन इसका वास्तविक में एक ही इसका सॉल्यूशन है, उपाय है। क्या है वो? भक्ति में अगर हमें ऊंचा स्वाद मिल जाए तो फिर इस नीचे स्वाद को व्यक्ति त्याग सकता है, अन्यथा मन में अभिलाषा हमेशा बनी रहेगी। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। आप सब सुने भी हैं, फिर से ये श्लोक सुनेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, यमुनाचार्य जी कहते हैं। आप सब यमुनाचार्य जी को जानते हैं? यमुनाचार्य जी श्री संप्रदाय में एक महान वैष्णव आचार्य है, रामानुजाचार्य के भी गुरु, बहुत बड़े आचार्य थे यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य जी पहले बहुत बड़े राजा थे, और फिर बाद में वो महान वैष्णव बन गए भक्त कृपा से। तो जब वो वैष्णव बन गए, भक्त बन गए, तो याद किए, क्योंकि पहले बहुत बड़े राजा थे, राजा लोग क्या भोग करते हैं। तो वो यमुनाचार्य जब भक्त बन जाते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। आप सब ध्यान से सुनिए इसको दोबारा से। यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम्नि उद्यन्तम् रन्तुमासीत् तद अवधि वतस नारी संगमे स्मर्यमाणे भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। तात्पर्य, चूंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ। कौन कह रहे हैं ऐसा? यमुनाचार्य जी कह रहे हैं, चूंकि मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मग्न रहता हूँ, जिससे मुझे नित नूतन आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं हर क्षण मुझे नया नया आनंद की प्राप्ति हो रही थी। भक्ति का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि हमेशा आनंद आम्बुदी वर्धनम, जो उन्नत स्थिति में रहते हैं भक्ति में, उनको हर क्षण नया नया आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि वो कृष्ण के नए नए गुणों को हर क्षण वो उसका आनंद लेते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसलिए मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, अतः जब भी मैं काम के आनंद के विषय में सोचता हूं, तो कहते हैं फिर भी क्योंकि संसार में है तो कभी भी मान लीजिए विचार आ जाता है, क्योंकि पहले राजा थे, बहुत सारे भोग किए हैं, तो कभी भी अगर बाय चांस गलती से अगर दिमाग में ऐसे कोई विचार आ भी जाता है तो मैं क्या करता हूं, इस विचार पर मुझे घृणा होने लगती है। सुना है बहुत भी गंदा चीज, कोई विष्ठा या कुछ ऐसी गंदी चीज देखे तो मैं घृणा होती है ना, तो कहते जब भी ऐसा कोई विचार मेरे मन में आता है तो मुझे बहुत घृणा होने लगती है और मेरे होठ बुरे स्वाद से भर जाते हैं, जैसे हम थूक थूक देते हैं ना बहुत गंदा चीज देखने से, या गंदा थूक देते हैं। तो वैसे ही इतना उनका उन्नत स्तर है यमुनाचार्य जी का कि जब उनमें मन में भी कोई विचार आ भी जाता है इस संसार में भोगने की इच्छा या काम वासना, तो उस पर वो थूक देते हैं, इतना उनको गंदा लगता है, क्योंकि उनको दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है भक्ति में, इनको भक्ति में इतना दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है कि संसार के जो तुच्छ भोग हैं उसके बारे में जब भी वो उनके मन में अगर गलती से विचार आ भी जाए तो उस पर वो थूक देते हैं। तो यही है एकमात्र इसका उपाय, सॉल्यूशन। अगर हमें इस काम वासना की इच्छा से या संसार में भोगने की इच्छा से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें भक्ति में हमें आगे बढ़ना है, और जब भक्ति में हमें स्वाद मिलने लगेगा तब इससे हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि इस संसार में जो हम बद्ध जीव हैं, दो तरह के जीव हैं, नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव, तो हम कौन हैं, नित्य बद्ध हैं, तो हम अनादि कृष्ण भुलिया जीव, अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तरे दे संसार दुख। तो अनादि बहिर्मुख, हम कृष्ण से अनादि काल से बहिर्मुख, मतलब समझते हैं आप, मुंह मोड़ लेना, मुंह जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं मैं अपना मुंह मोड़ लूं, उसे कहते हैं बहिर्मुख, बहिर्मुख। तो हम सब कृष्ण से अपना मुंह मोड़ लिए, यानी कृष्ण से हम दूर हो गए, हम खुद भोग करना चाहते थे इसीलिए हम इस संसार में आए हैं, और एक बार इस संसार में हम आए हैं तो हम फिर इसमें पूरी तरह से बद्ध हो जाते हैं, फिर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही संसार बनाया कि एक बार इसमें आ जाए तो निकलना बहुत मुश्किल है। एकमात्र उपाय क्या है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते मायामेताम तरंती। बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि ये जो देवी माया है, भगवान कहते हैं कि मेरी तो शक्ति है, तो हम तो जीव है ना, जीवात्मा बहुत शुद्र है, हम बहुत छोटे हैं, तो हम में वो ताकत नहीं है कि हम भगवान की जो दिव्य शक्ति है, क्योंकि माया भी भगवान की शक्ति है, तो माया से हम खुद झगड़ नहीं सकते, माया बहुत शक्तिशाली है, हम कुछ नहीं है माया के सामने। देवी ऐसे गुणमयी मम माया धुरतया, कोई नहीं पार कर सकता, हम सुन चुके हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि वो नहीं पार कर पाए इस माया को, तो हम तो उनके सामने है ही क्या, तो नहीं कर सकते अपने प्रयास से। लेकिन एक उपाय है, क्या है, मामे वे प्रबदन्ते मामेताम तरंती। अगर हम भगवान के शरण में जाएं तो भगवान चाहे तो हमें मुक्त कर देंगे, क्योंकि माया कौन है, भगवान की तो शक्ति है। एक बार अभी भी मुझे स्मरण आया एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक बार वैश्य महाराज जी सुना, शायद यहीं पे प्रवचन में एक बार वैश्य महाराज जी कह रहे थे, बहुत सुंदर उदाहरण है, छोटी सी कहानी, कहते हैं आजकल सब घरों में क्या बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं, आप देखें ना बहुत भयानक कुत्ते रहते हैं घरों में, तो डर लगता है कहीं जाने भी, किसी बड़े आदमी के घर जाए या कहीं जाए तो इतने वो कुत्ते बिल्कुल शेर जैसे दिखते हैं, बड़े बड़े कुत्ते, बहुत डर लगता है। तो उदाहरण कह रहे सुना था कि अगर हम जाएं डायरेक्ट मालिक के घर में चले जाएं तो कुत्ता क्या करेगा, तुरंत भौंक के हमारे पास आएगा, और अगर हो सकता है अगर खुला हो तो काट भी ले हमें, भयानक कुत्ता तुरंत हम पे हमला करेगा और हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत शक्तिशाली है वो कुत्ता। लेकिन एक उपाय है, क्या करना चाहिए हमें, तुरंत अगर हम मालिक को बुला लें जिससे मिलने आए हम, क्या अरे अरे हम आपके घर में आए हमको बचाइए इस कुत्ते से, तो क्या होगा, तुरंत वो मालिक आएगा और बोलेगा ये टॉमी शांत हो जा, क्या होगा फिर, कुत्ता एकदम से शांत होके चुपचाप होके बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। वही कुत्ता जो इतना खूंखार था, इतना भौंक रहा था, हमें काटने के लिए आ रहा था, एक बार अगर उसका मालिक कह दिया कि चुप होके बैठ जाओ, ये मेरे मित्र हैं या मेरे संबंधी हैं, तो माया फिर ये कुत्ता फिर चुपचाप बैठ जाता है। तो उसी प्रकार माया देवी, हालांकि माया देवी देवी है, लेकिन एक उदाहरण के लिए कि वो भी हमें इसी प्रकार हर जीव को वो संसार में कष्ट दे रही है। लेकिन अगर एक बार अगर हम भगवान को पुकारें, भगवान से हमारा संबंध बनाने का प्रयास करें, और अगर कृष्ण एक बार बोल दे कि इसको छोड़ दो, ये मेरा भक्त बनने का कोशिश कर रहा है, इसको तुम छोड़ दो, तो फिर माया हमें परेशान नहीं कर सकती। तो यही एकमात्र सोल्यूशन है, हम अपने शक्ति से कभी माया के साथ झगड़ नहीं सकते। एक बार और ऐसी ही कहानी सुना है कि एक बार शायद प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो एक छोटा सा कछुआ था, तो कछुआ बाहर आ गया पानी से, ऐसे होता ना पानी के वो समुंदर से वो बाहर आते हैं, तो बाहर आ गया। फिर शायद ब्रह्मानंद प्रभु जी गए उनके पास और उसको लेके वापस मतलब पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वो वापस से रेंद के पानी में चली गई। और एक बार जब पानी में चली गई, फिर पानी लहर से फिर वो अंदर चली गई कछुआ, ऐसा ही कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो प्रभा जी की देखिए, हालांकि वो कछुआ छोटा है, लेकिन वो किसका आश्रय लिया है, समंदर का, जो कि ज़्यादा शक्तिशाली, इसलिए हम चाहने से भी उसको पकड़ नहीं सकते। तो इस प्रकार हम बहुत क्षुद्र जीव हैं, लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण का आश्रय लें तो हमें माया और हमें बद करके नहीं रख सकते, माया की शक्ति को हम हरा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के आश्रय जब होते हैं और भक्ति में हमें ऊंचा स्वाद मिलता है। क्या भक्ति में ऊंचा स्वाद, तो बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे आप सब जानते हैं, भक्ति में जो है पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद रुचि। तो जब हमें भक्ति भक्ति में रुचि आने लगेगा, तब तो हम विचलित होंगे नहीं संसार के काम वासना से। लेकिन जब हम अनर्थ निवृत्ति की स्थिति में हैं, तभी भी हम बच सकते हैं। लेकिन उसका क्या उपाय है, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गंभीर रूप से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे बचाइए, इस आपकी जो माया शक्ति है, इससे मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, आप ही मुझे कृपा करके बचाइए। एक बहुत सुंदर श्लोक है चैतन्य चेतामृत में, ये सनातन शिक्षा, जब महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, तो एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, भक्ति क्या इच्छा है, आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं दोबारा से आप सबको सुनाना चाहता हूँ। ये मध्य लीला के 22वें अध्याय का 16वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, कि हमारे स्थिति में जब हम भक्ति में हम प्रयास कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारी काम वासना नहीं जा रही है, हमें संसार में भोग की इच्छा अभी भी है। कहा गया है कि हमारे हृदय में दो पिसाची है, भुक्ति और मुक्ति। भुक्ति इच्छा यानी संसार में भोग करने की इच्छा, और मुक्ति की इच्छा यानी संसार से मुक्त होने की इच्छा। दोनों इच्छा भक्ति के अनुकूल नहीं है, पिसाचिनी के रूप में कहा गया है। तो एक श्लोक है कि भक्ति और मुक्ति रूपी पिसाचिनी जब तक हमारे हृदय में है, तब तक भक्ति नहीं आ सकता। भुक्ति और मुक्ति रूपी पिसाचिनी जब तक हमारे हृदय में वास करेगी, तब तक भक्ति देवी हमारे हृदय में नहीं वास करेगी। अगर भक्ति देवी को हमें हृदय में वास कराना है, तो भुक्ति और मुक्ति की दो पिसाचिनी को हमारे हृदय से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्या करें, इतना हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान को हमें निस्सहाय होकर प्रार्थना करनी चाहिए। एक सुंदर श्लोक है, कामादिनाम कटिना कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषां जातमैना करुणा न त्रिपानोपशान्तिहि उत्स्रयितान अथ यदुपते साम्प्रतम लब्ध बुद्धिस् त्वाम आयत शरणम अभयम् माम न्युक्ष्वात्म दास्ये। तो बहुत सुंदर श्लोक है, कहते हैं हे मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर हिंदी में अनुवाद करूंगा। ओ माई लॉर्ड, देर इज नो लिमिट टू द अनवॉन्टेड ऑर्डर्स ऑफ लस्टी डिजायर्स। कहते हैं हे भगवान, जो मेरे हृदय में जो काम की इच्छा है, वासना है, उनका कोई अंत नहीं है। ऑल दो हैव रेंडर्ड दीज डिजायर्स सो मच सर्विस, दे हैव नॉट शोन एनी मर्सी टू मी। हालांकि मैंने इन इच्छाओं की इतनी सेवा की है, लेकिन वो मेरे प्रति कृपालु नहीं है। आई हैव नॉट बीन अशेम टू सर्व देम, नॉर हैव आई इवन डिजायर टू गिव देम अप। लेकिन मैं इतने इतना निर्लज हूँ कि मैं उन्हीं उसी काम क्रोध ये सब की मैं सेवा में लगा हूँ। हे कृष्ण, हे यदुपति, ओ माय लॉर्ड, ओ हेड ऑफ यदु डायनेस्टी, रिसेंटली हाउएवर माय इंटेलिजेंस हैज बीन अवेकेंड एंड नाउ आई एम गिविंग देम अप, लेकिन अभी मेरी बुद्धि थोड़ी सी जाग गई है और मैं चाहता हूँ कि इन झूठे स्वामियों को मैं परित्याग करूँ। ड्यू टू ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस आई नाउ रिफ्यूज टू ओबे द अनवॉन्टेड ऑर्डर्स ऑफ दीज डिजायर्स एंड आई नाउ कम टू यू टू सरेंडर माई सेल्फ एट योर लोटस फीट, काइंडली एंगेज मी इन योर पर्सनल सर्विस एंड सेव मी। तो इतना सुंदर प्रार्थना, भक्त का सुंदर भाव है, कहते हैं हे प्रभु, अभी तक मैं काम क्रोध इत्यादि जो स्वामी हैं उनकी सेवा में लगा था, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं है मेरे सेवा से और वो रोज रोज उनकी जो अभिलाषा है वो बढ़ती जाती है, लेकिन अब मेरी बुद्धि जाग गई है। हमारी बुद्धि कैसे जागती है, कैसे जागती है हमारी जो बद्ध जीव की बुद्धि है, कैसे जागती है? गुरु कृपा से। ब्रह्मांड भ्रमिते कोने भाग्यवन जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो हम सब आज यहाँ बैठे हैं, हम सबको कृपा प्राप्त है गुरु और कृष्ण की, श्री प्रभुपाद जी कृपा से हम सबको भक्ति के बारे में ये ज्ञान मिला है। तो जब हमारी बुद्धि जाग गई है, अब हमें इन स्वामियों की सेवा नहीं करनी चाहिए और हमें कहना चाहिए कि नहीं, अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं, बहुत कर लिया, बहुत जन्मों से हम इंद्र तृप्ति में लगे हैं, काम क्रोध की सेवा में लगे हैं, लेकिन कभी संतुष्ट हुए हैं, कभी संतुष्ट नहीं, अब हमें इसकी सेवा नहीं करनी। तो हे भगवान, अब मैं आपके शरण लिया हूं, आई कम टू यू टू सरेंडर माई सेल्फ एट योर लोटस फीट, मैं आपका शरण लिया हूं हे भगवान, इसलिए कृपा करके मुझे आप मेरी रक्षा कीजिए और अपनी सेवा में लगाइए। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस एंड सेव मी। हे भगवान, आप मुझे बचाइए, आप ही मुझे बचाइए और मुझे कोई और मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, आप मेरी रक्षा कीजिए और अपनी सेवा में लगाइए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान की जो नित्य शक्ति है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान को या सीताराम लक्ष्मी नारायण, तो इन सबको हम प्रार्थना करके यही बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, हे भगवान की दिव्य शक्ति राधा रानी, हमें आप अपनी सेवा में लगाइए, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम इस संसार में अनादि काल से हम अपनी इंद्र तृप्ति में लगे हैं, काम क्रोध की सेवा में लगे हैं, हमको इनकी सेवा से हटाइए और अपनी सेवा में लगाइए। और अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे, जैसा मैंने बताया कि गुरु की कृपा से ही हम ये ज्ञान प्राप्त होता है, उनके मार्गदर्शन में चल के अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें बचाएंगे, और कोई उपाय नहीं है, हम अपनी शक्ति से अपने आप को नहीं बचा सकते। कल रामानंद राय जी का तिरुभाव था, आपने सब सुना उनकी कथा, तो आप सुने होंगे रामानंद राय जी के जो चरित्र है उसमें, कि रामानंद राय क्या कर रहे थे, जो देवदासियां हैं, जो बहुत सुंदर कन्याएं हैं, उनको वो प्रशिक्षण दे रहे थे नृत्य करने के लिए, जगन्नाथ जी के सामने गाने के लिए। तो आप सोचिए, रामानंद राय जी इतने महान भक्त थे कि उन सुंदर स्त्रियों को वो खुद अपने हाथों से प्रशिक्षण कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उधर चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि मान लीजिए आप पत्थर को छूते हैं तो आपका मन विचलित होता है, नहीं होता। तो उसी प्रकार हालांकि वो सुंदर स्त्रियों को अपने हाथ से छू रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तो आप तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो स्त्री का नाम सुनने मात्र से ही विचलित हो जाता हूं, लेकिन रामानंद राय जी को देखिए, इतने महान भक्त हैं कि वो बिल्कुल जो तरुणी हैं उनको अपने हाथों से सिखा रहे हैं नृत्य करना, उनको अपने हाथों से नहला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका मन तनिक भी विचलित नहीं हो रहा है। तो वो है भक्त। तो जो महान शुद्ध भक्त होते हैं उनकी ये स्थिति है। अब आप सोचेंगे भाई कैसे संभव है कि रामानंद राय जी का तो हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि रामानंद राय कौन है, विशाखा जी, तो वो तो गोपी भाव में है, गोपी के दासों के भाव में है, इसलिए वो सेवा कर रही है जो उनकी, ताकि कृष्ण की सेवा करें। लेकिन इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि काम वासना से मुक्त होने का यही उपाय है कि मैं भक्ति में ऊंचा स्वाद मिल जाए, क्योंकि रामानंद राय जी हमेशा राधा कृष्ण जी की सेवा में ही मग्न थे, उनका मन कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। तो अगर इस भावना में जब भक्त होता है तो वो कभी भी अपनी भोग के बारे में नहीं सोचता। तो भक्ति में बहुत ही ऊंचा स्तर है, लेकिन फिर भी हम धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं इस स्तर में आने के लिए। जैसा भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्चम रसोपियस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब तक हमें ऊंचा स्वाद नहीं मिलेगा, हम नीचे नीचे चीजों को नहीं छोड़ सकते। आप जानते हैं, छोटा सा बच्चा भी मान लीजिए कुछ गलत हाथ में पकड़ा है, तो आपको अगर उससे हाथ से उसको लेना है तो आपको कुछ और देना पड़ेगा, तभी उसको वो छोड़ेगा। तो इसी प्रकार हम इस संसार में भोग करने की इच्छा कर रहे हैं, हमें लग रहा है इसी में आनंद मिल रहा है, तो जब हमें कोई ऊंचा आनंद मिलेगा, ऊंचा स्वाद मिलेगा, तो हम नीचे चीज को छोड़ देंगे। तो भक्ति में जब हमें ऊंचा रस मिलेगा, जैसे यमुनाचार्य जी कह रहे हर क्षण नया नया रस, नया नया आनंद मुझे मिल रहा है, तो तब तो ये संसार में भोग करने की इच्छा हमारे सामने बहुत तुच्छ होगी। लेकिन जब तक हम उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं, तब तक हमें क्या करनी चाहिए? साधना भक्ति में लगे रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और तीव्रता से भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, वैष्णव को, गुरु को, कृष्ण को प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि काम वासना के वशीभूत होकर लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद आनंद खुश होना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत भोग करना चाहते हैं। तो जितनी मेहनत से लोग इस संसार में प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें उतना ही मेहनत करनी चाहिए किसके लिए? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो काम को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं किनका? हनुमान जी का। कैसे उन्होंने क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया? तो क्रोध को थोड़ा भगवान की सेवा में लगाना मुश्किल है, इसको थोड़ा सावधान रह के लगाइए, ऐसा नहीं आप किस पे क्रोधित हो तुरंत हो जाए। लेकिन फिर भी जो अभक्त होते हैं या कोई वैष्णव के प्रति निंदा करते हैं, तो हमें उन पर बहुत क्रोधित होना चाहिए। जैसे महाप्रभु स्वयं, चैतन्य महाप्रभु तो बोले हैं त्रिनादपि सुनिचे न तरुरेव सहिष्णुना, लेकिन स्वयं महाप्रभु जब जगाई मधाई नित्यानंद पे आहार आघात किए, मधाई खास करके जब नित्यानंद प्रभु को मारा, तो महाप्रभु क्या चुपचाप बैठे रहे? नहीं, बहुत क्रोधित होके आए। तो महाप्रभु में शिक्षा दे रहे हैं कि अगर वैष्णव के प्रति कोई अपराध करे, भगवान के प्रति अपराध करे, तो हमें उस समय क्रोधित होना चाहिए। जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ दिया संकीर्तन में, तो महाप्रभु चुपचाप नहीं बैठे, बहुत क्रोधित हो गए, सारे भक्तों को लेके गए, लाखों करोड़ों भक्त इकट्ठे हो गए। महाप्रभु बोले आज मैं देखता हूँ वो चांद काजी कहाँ जाएगा, मेरे हाथों से कैसे बचेगा। और सारे भक्त क्रोधित होके आए, सब बोले इसका घर जला देंगे, इसको मार देंगे। फिर लास्ट में खैर महाप्रभु ने उनसे वार्तालाप किए और फिर चांद काजी समझ गया। वास्तव में हुआ क्या था? रात में कौन आए थे चांद काजी के सपने में? नरसिंहदेव आए थे चांद काजी के सपने में साक्षात प्रकट होके, और बोले मैं आज ही तुम्हारे हृदय को चीर दूंगा, आगे से अगर ऐसी कोई गलती की, तुम्हें कभी भक्तों परेशान किया, तो तुरंत मैं तुम्हें फाड़ दूंगा नाखूनों से। तो क्रोध को भी भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, और काम को कैसे लगा सकते हैं? उसी तीव्रता से, उसी जो रजोगुणी जो स्वभाव है मेहनत करने वाला, उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लगाएं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अंतिम सॉल्यूशन तो यही है कि हमें भक्ति में ऊंचा स्वाद मिल जाए, लेकिन तब तक जब तक हमें ऊंचा स्वाद नहीं मिला, तब तक क्या करनी चाहिए? हमें साधना भक्ति में लगना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए और भगवान को तीव्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे बचाइए। प्रभुपाद जी स्वयं भी प्रार्थना करते थे। एक बार भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा, एक बार भक्त देखे कि प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हो, कृष्णा प्लीज सेव मी फ्रॉम माया, मुझे माया से बचाइए। तो भक्त लोग बोले प्रभुपाद जी आप भी ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी हाँ, हर भक्त को करनी चाहिए प्रार्थना। तो जब प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम सबको तो हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे आप अपनी माया से बचाइए, अपनी सेवा में लगाइए। और नरसिंहदेव को हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले नरसिंह चतुर्दशी हम सब बनाए थे, तो उस समय इंग्लिश क्लास में जनार्दन महाराज जी एक बहुत सुंदर श्लोक पे क्लास दिए थे। भागवतम में 5वें स्कंद में आता है, जब पूरे ब्रह्मांड की वर्णन दी गई है उसमें, तो एक लोक है जिसमें नरसिंहदेव निवास करते हैं। तो प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव की स्तुति कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज, ये बस हम लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, नरसिंहदेव भगवान को कहते हैं कि हे नरसिंहदेव, आपने जैसे हिरण्यकशिपु का वध किया, उसी प्रकार आप मेरे हृदय में बैठे हुए जो राक्षस है, काम क्रोध इत्यादि, उन सब का आप वध कीजिए, मेरे को बचाइए। तो हमें जब हम नरसिंह प्रणाम, प्रभुपाद जी कहते हैं उस श्लोक में, जब हम नरसिंह प्रणाम गाते हैं, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकश्यपुर्वक्षः शिलटंकान खालय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतयामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिम शरणम प्रपद्ये। तो प्रभुपाद जी कह रहे, जब हम कहते हैं कि हृदय में बहिर् नरसिंहा हृदय नरसिंहा, कि हे नरसिंहदेव जो आप मेरे हृदय में है, आप कृपा करके जो मेरे हृदय में जो राक्षस बैठे हैं या दानव बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, कई ऐसे तो कई से राक्षस, लेकिन छह मेन राक्षस हमारे हृदय में ही बैठे हैं, जो हिरण्यकश्यप से ज्यादा शक्तिशाली है। तो हे नरसिंहदेव आप ही इनका संहार कीजिए। भगवान नरसिंहदेव के लिए राक्षस क्या है? कुछ भी नहीं है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, नरसिंहदेव से, कि कैसे हमारे हृदय में इन सब राक्षसों को का वध करें। और फिर धीरे धीरे जब हम अनंत निवृत्ति को पार होकर रुचि की भाव आ जाएंगे, निष्ठा रुचि आसक्ति, और एक बार अगर हम रुचि के स्तर में आ गए, जब हमें भक्ति में आनंद प्राप्त होने लग जाएगा, फिर तो अपने आप संसार के आकर्षण हमारे लिए तुच्छ हो जाएगा, इसके प्रति हम फिर आकर्षित नहीं होंगे। तो यही प्रभुपाद जी का यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं। और प्रभुपाद जी ने इसको प्रमाण किया, अभी हम इस्कॉन की 50वीं साल बना रहे हैं। प्रभुपाद जी जब जलदूत में गए और पहली बार जब अमेरिका पहुंचे, वहां देखे कि पूरा समाज कैसे रजोगुण तमोगुण में था, तो प्रभुपाद जी तो एक बार आश्चर्यचकित हो गए, मैं कैसे इनको प्रचार करूंगा। फिर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वो जो सुंदर कविता लिखते हैं कि बड़ो कृपा कैल कृष्ण अधम मेरा प्रति, उसमें कहते हैं यही श्लोक भागवत का कोट करते हैं, नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिके। तो जो हमारे हृदय में जो अभद्र चीज है वो सब दूर हो जाएंगी, भगवान स्वयं सफाई करेंगे हमारे हृदय का। भगवान कहते हैं विधुनोति, भगवान खुद धो देंगे सारी गंदगी हमारे हृदय की, हम खुद नहीं धो सकते क्योंकि कई कई जन्मों से हमारे हृदय में ये गंदगी बैठी हुई है। लेकिन अगर हम नित्य रूप से श्रवण कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भागवत सुनेंगे, तो भगवान स्वयं हमारे हृदय को साफ करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। तो किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो आप बता सकते हैं।